ناول زدی، رائٹر عصمت چغتائی، کل صفحات 102، آواز تاشا، ایپیسوڈ 1، پیج نمبر 3، اپنے پیارے منے بھائی عظیم بیگ چغتائی مرحوم کے نام، مگر میں تو آپ کے نام سے اپنی کتاب نہیں مانون کروں گی، میں نے جواب دیا۔ کیوں، پھر کس کے نام سے کرو گی؟ میرے جلنے پر وہ طنز سے ہنستے تھے۔ خود اپنے نام سے، آپ کے نام سے کیوں کروں؟ اتنی کتابیں لکھیں اور ابھی جی نہیں بھرا، پگلی؟ کوئی اپنی کتاب خود اپنے ہی نام مانون کرتا ہوگا۔ ان کے ہنسنے پر بڑی جلن آتی تھی اور میں جل گئی۔ کچھ بھی ہو، آپ کے نام تو کبھی نہ کروں گی، مگر اب بس نہیں چلتا کہ کیا کچھ نہ ان کے نام کر دوں۔ کاش کوئی جا کر انہیں بتا سکتا مرنے والے کس قدر بے رحم ہوتے ہیں۔ عصمت چغتائی، پورن۔ پانی جان توڑ کر برس رہا تھا، معلوم ہوتا تھا آسمان میں سوراخ ہو گئے ہیں۔ سچ بھی ہے، کب سے تنا کھڑا ہے، سڑ گل گل سوراخ ہو جانا کیا تعجب۔ کئی رات برستا رہا اور صبح سے برس رہا تھا، زور زور سے، گویا بھر بھر سمندر پانی کے کوئی پوری طاقت سے زمین پر پٹک رہا ہو۔ دیواروں کے گھر تو کبھی کے پانی کے تمانچوں سے بے دم ہو کر بیٹھ گئے، چھپر گیلی داڑیوں کی طرح بانسو اور بلیوں سے جھول پڑے اور گھر والے پیڑوں کے نیچے دبک بیٹھے، مگر پانی جن سے ان سے چھیڑ کر رہا تھا۔ کوئی پیڑ بھی پتھر کے سائبان تو نہ تھے جو پانی پتوں کو چیر پھاڑ کر سروں پر نہ گرتا، ویسے بھی جیسے کوئی چلو بھر بھر کر پیڑوں کے بھی نیچے پانی الجھ رہا تھا۔ پر نالوں کی واویلا سے اور بھی حواس گم تھے، اور پھر رات آ رہی تھی، گھٹا ٹوپ سیاہی گاڑی ہوتی جا رہی تھی، گٹر تیزی سے لڑک رہے تھے۔ آشا ماں کو آخری گھونٹ پانی کے دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں تو جانے کب مر گئی تھی، پر یہ نانی ہی ماں باپ سبھی کچھ تھی۔ اب نانی بھی چل چلاؤ پر تلی تھی اور باپ بیکار نکھٹو سا تھا، ایک دن اسٹیشن کے پاس مرا ہوا پڑا ملا۔ نانی بہت کچھ اسے دیتی تھی، پر اب وہ بھی بوڑھی ہو چلی تھی۔ یہ بات تھی کہ وہ راجہ صاحب کی کھلائی رہ چکی تھی، اور راجہ صاحب کے بعد ان کے بیٹوں کو بھی انہی سوکھے مارے گھٹنوں پر وہی سڑی پرانی لوریاں دی تھیں جو وہ ان کے باپ کو دے چکی تھی، پر وہ خراج تھی۔ اور پھر کوئی جاگیر تھوڑی مل گئی تھی، زیور تھوڑا تھوڑا کر کے کھایا، برتن رکھنے کی ضرورت ہی کون سی تھی، عمر بھر راجہ صاحب کے یہاں رہی، اور بڑھاپے میں کون سونے کے تھال لگاتا ہے۔ کئی سال سے محل کے کونے میں پڑی سڑ رہی تھی، راجہ صاحب نے عذرائے ہمدردی اسے پینشن دے کر گاؤں بھیج دیا۔ کچھ بھی تھا، اسے سکون تھا کہ وہ اپنے گاؤں میں مر رہی تھی۔ اپنا گاؤں کہاں، گاؤں تو راجہ ہی کا تھا۔ نہیں آیا، ابھی نہیں آیا، آشا سمجھی بڑھیا یمدوت کو یاد کر رہی ہے، مگر وہ پورن کے متعلق سوچ رہی تھی۔ پورن راجہ صاحب کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا، وہ اچھا خاصا 7 برس کا ہو گیا تھا، تب بھی بوڑھی اماں کے ساتھ ہی سوتا تھا، اور ہر اتوار کو گاؤں بڑے بھائی کے ساتھ آیا کرتا تھا، اور آج تو اتوار تھا۔ بڑھیا نہ جانے کیوں اس کا انتظار کر رہی تھی، اور اسی لیے ٹھہری ہوئی تھی، ورنہ اسے قاعدے سے تو بہت پہلے ہی مر جانا چاہیے تھا۔ رنجی کی ماں کہاں ہے، گئی؟ بڑھیا پھر جاگی۔ ہاں ماں، کیا بلا لوں؟ می پڑ رہا ہے؟ نہیں، پر ہے بڑی، وہ ایسے چھوڑ گئی؟ سانس گھٹی جا رہی تھی۔ کیا می بہت پڑ رہا ہے؟ بڑھیا کو فکر ہوئی، कि अब जलाई कैसे जाएगी। हां, आशा सहमी हुई दोती का किनारा मरोड़ रही थी। और जने रंजी की मां कहां मर गई, न जाने रंजी की मां पर इतनी ममता क्यों आ रही थी। रंजी वैसे तो रंजीत और सिंह बनियापन छुपाने को लगाया गया था, मगर कहलाते अबे रंजी थे। और ये वालिदा साहिबा, खरिया की दुल्हन, मोती की बहू और राम भरोसे की बीवी, और न जाने नामालूम कितनी जगह बदल चुकी थी। पर सब कमबख्त मर मर के, और उनमें से किसी एक की यादगार रंजी थे। समाज में उनकी हैसियत भी थोर के दरख्त किसी थी। ज्यारा ज्यादा कार आमद बनने का उनमें जज्बा ही ना था। कम सिनी में कुछ दिनों हेजड़ों की टोली में जा घुसे, और रंजी की मां को सारा दिन मोहल्ले वालों को गालियां तकसीम करने में गुजर जाता। न जाने क्यों वो बजित थी कि हेजड़ू की टोली में नहीं बल्कि नौटंकी में गया है, जो छोटा मोटा थिएटर होता है, कुछ भी हो। रंजी की निभी नहीं, और वो पिटकर भाग आए, और अब गांव भर में अपनी नगमा सराई के लिए मशहूर थे। और एकदम बागियाना ख्यालात कजा हेजड़ू में थे, और कजाब अव्वल नंबर के गुंडों में शुमार किए जाते थे। कुछ भी था, मगर वालिदा साहिबा तो सर उठा के चलती थीं। बुढ़िया की बेकरारी बेकार न गई, और वो बोरा ओढ़े आन पहुंची। कहां चली गई थी बुढ़िया, मौत के फरिश्ते की तरह गुर्राई। ए जरा देखने गई थी रंजी लौटा के नहीं, लक्ष्मी की मां के गई थी। हरामी न जाने कहां मरा है जाके, चाहे मैं मर जाती। बुढ़िया अकेली आशा के सामने नहीं मरना चाहती थी कि कहीं उसका दिल ना हिल जाए। रंजी आशा पर आशिक थे। बुढ़िया को पहले तो बहुत बुरा लगा, मगर फिर सर घुमाकर देखा तो और कौन से हीरू जड़े थे। और यह भी बात थी कि रंजी लुच्चा होगा अपने घर का, आशा से छेड़ करने की उसमें कभी हिम्मत ना हुई। आशा बाहर भी कब जाती थी, बुढ़िया सांप बनी उसकी हिफाजत कर रही थी। सारा काम रंजी की मां रिश्वत में कर रही थी, और रंजी जब कभी आता गधे की तरह सर झुकाकर बैठ जाता। बुढ़िया राजी ही थी, पर अभी नहीं। अभी आशा थी ही कितनी, 2 साल हुए तो उसने बाकायदा धोती पहनना शुरू की, वरना लहंगा पहने जरा सी बच्ची लगती थी। मगर रंजी की मां की राय में लहंगे साड़ी से कुछ नहीं होता। जब वो इतनी थी तो 2 बच्चे गिर चुके थे और 3रा वारिद होने को था। अपनी अपनी उठान है, बड़ी भी जब अच्छी थी तो उनकी हिम्मत से मरूब हो जाया करती थी और कहती थी, आशा मेरी धान पान है, और रंजी की गैंडे जैसी मस्तक देखकर सहम जाती। रंजी बुरा भी ना था, हुसन का मुकाबला तो हो नहीं रहा था, ठिगना जरूर था, और बतेसी जरा लोटी हुई सी थी। बजाय नीचे के दांतों के ऊपर के दांत अंदर थे, और थोड़ी जरा आगे को थी। जब हंसता था तो मालूम होता था किसी ने गला उल्टा कर दिया है, और होंठ तो दोनों एक जैसे सपाट ही थे। नाक थोड़ी नीची और वसी थी, मगर आंखों में रस था, और बाल जैसे आजकल बड़े लोगों में जिसे देखो गंजा होता है, पर हफ्तों ना धोने के बायस धूल में अटे हुए। पूरा नहीं आया, रंजी के जिक्र से उकता कर रुख पलटा। ए लो, वो इस पानी में आएंगे, बड़े आदमी किसी के भी ना होते हैं, सच तो ये है। बुढ़िया में दम होता तो वो इतना लड़ती कि रंजी की मां पस्त हो जाती, अंधी कहीं की कोड़न। और वो जो हरिद्वार आता था तो कैसे दिखाई ना देता था, आते ही वो अचार की हंडिया टटोलता और उम्दा घी की फरमाइश करता। उम्दा घी और लड़ाई के जमाने में, भला किधर से आए ना जाए, ये लड़ाई में घी का क्या खर्च है। तोपों में भर भर कर मारते होंगे, भला घासलेट क्यों नहीं भरते? आदमी तो खाए घासलेट, और तोपे? हाँ, तोपे ही हुई, सुरह अंगारा जैसे दहानों की तोपे। जरा बोलो, आग उगलने लगे ये गोरे। लो, ये घी के जिक्र पर गोरे कहां से आन टपके। हां तो पूरन हर इतवार आता था, आज बूढ़ी खिलाई को इसका इंतजार था। तुम्ही बरसने पर तुल पड़ा। वाह, तुझे क्या मालूम आएगा वो, जरा देख तो कहीं। है कहीं भी नहीं आया। रंजी की मां उठने के डर के मारे जल्दी से बात टालने लगी। कुछ खाया भी? क्या हाल हो गया है? उसने जहां बुढ़िया को मौत की याद दिलाकर धमकाए। इंतजार की चंद घड़ियां ही गुजरी थी कि राजा साहब की मोटर की आवाज आई। बुढ़िया में जैसे थोड़ी देर के लिए दम आ गया। वो मोटर की आवाज को खूब पहचानती थी। मोटरें आती ही कब थी गांव में, और जरा सी देर में पूरन सड़े बसे पलंग पर मोहब्बत से बुढ़िया के पास बैठा था। अम्मा, यहां ठीक इलाज नहीं हो रहा है, तुम्हें लेने आया हूं। बुढ़िया तो जाने को तैयार थी, मगर कोई पूरन से भी जबरदस्त उसे तेजी से घसीट रहा था। अब तो परमात्मा के चरणों में चली बेटा, कैसी बातें करती हो। और तुम तो कहती थी कि पूरन की बहू लाऊंगी, उसका बेटा खिलाऊंगी, और फिर अब परमात्मा से छुट्टी लेकर आओगी। बस आज ही चलो, वहां तुम्हारा इलाज यूं हो जाएगा, पूरन ने चुटकी बजाकर कहा। अब मेरा इलाज दुनिया के किसी डॉक्टर से ना होगा, मेरी बात सुन। नहीं अम्मा, तुम सुन मेरे लाल। आशा मेरी बच्ची, मैंने इसे बड़ा खिलाया है, बड़ी प्यारी बच्ची है, इसे राजा साहब के चरणों में पहुंचा देना, इसे दुख ना देना, और कहीं अच्छा लड़का ढूंढकर इसका ब्याह कर देना। अब इसके दुनिया में तुम ही लोग हो। पूरन मौत के आसार बिना पहचानता था। तुम खुद ही चलो, मैं तो जाऊंगी, मगर रंजी ही ढंग का होता। रंजी दुकान करने की सोच रहा है, बनिए ने वादा किया है, रंजी की वालिदा बोली। 2 दिन में चल निकलेगी। हालांकि रंजी कई दुकानें कर चुके थे, मगर जितने दिन माल चलता दुकान भी चलती, और फिर जब सब कुछ खा पी चुकते तो दूसरा धंधा इख्तियार किया जाता। दही बड़ू का खोंचा लगाया, दिन भर चक चक कर ही खत्म कर डाला। सिगरेट बीड़ी की दुकान, दोस्त यार फूंके, जेब के दाम भी गए। हां, जो रंजी किसी कर्म का हो जाए तो बुरा नहीं। देखा जाएगा अम्मा, पहले अच्छी तो हो जाओ। बुढ़िया को अच्छे होने से कोई दिलचस्पी ही ना थी, और होगी भी तो मौत को सख्त जल्दी थी। और जब आशा को सिसकता छोड़कर बुढ़िया चल दी, तो पूरन की फरमाइश धरी रह गई। रंजी की मां इतना चीखी कि आशा भी सहम कर चुप हो गई। ऐसे शोक करने वाले कौन थे? पेड़ सूख गया तो पत्तियां भी इधर उधर बिखर गईं। आशा जिंदगी के नए रास्ते पर चलने के लिए पूरन की मोटर में राजा साहब के यहां चल दी। रास्ता भर वो कोने में तुपकी, आंसू पूंछा की। पूरन को उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी ना हुई कि कहीं वो और ना रोने लगे। मगर जब आशा महल में पहुंची तो उसका धड़कता हुआ कलेजा जरा की जरा थम गया। राजा साहब ने मोहब्बत से हाथ फेरा और माताजी ने पास बिठा लिया, मगर भाभी ने तो सचमुच कलेजा से लगा लिया। कम उम्र में गम, और वो भी बूढ़ी नानी का, जरा से दिनों में खत्म हो गया। और साथ की दूसरी नौकरानियों, कामकाज और भाभी के बच्चों की मोहब्बत में और भी कुछ ज्यादा याद न रहा, और आशा एक सीधी पुरसकून जिंदगी गुजारने लगी। नया बाब, भाभी। आशा के ना कोई भाभी थी ना बहन, फिर भाभी का तो सवाल ही क्या था। مگر وہ جب کبھی گھر کی چنچل اور خوش مزاج بہو کو دیکھتی اس کا دل محبت سے لرز اٹھتا۔ بابی کا قد منا سا گڑیا جیسا تھا اور ویسے ہی چھوٹے چھوٹے کمزور ہاتھ، مگر وہ شریر کتنی تھی اور کہہ کے کیسے گونجتے تھے جیسے چاندی کے موتی آپس میں ٹکرا رہے ہوں۔ وہ کسی طرح بھی تو تین بچوں کی ماں نہیں معلوم ہوتی تھی، نرمل سے تھوڑی ہی بڑی تو لگتی تھی۔ اور نرمل بھی جب پیدا ہو گیا تھا، جب بابی کو سیدھے پلے کی ساڑی بھی پہننا نہ آتی تھی، اور شیلا بھینس کی بھینس، پھول جیسی ماں کی کتنی پھولی کپا بیٹی تھی، اتنا کھاتی کہ ماں تو تین دن میں نہ کھا سکتی، اور سب سے چھوٹا بھیا تو بس غضب تھا۔ ہاں، وہ ذرا بھابھی کا بیٹا لگتا تھا کیونکہ اس پر ہی وہ فدا تھی۔ یہ بے تکے بچے اور پتی مہاراج تو بس بدھ کا مجسمہ تھے۔ جتنا بیوی ہنستی اتنا ہی وقت وہ چپ رہتے، کسی بنیے کی پرچھائی پڑ گئی تھی، بس سوائے گاؤں کی دیکھ بھال کے اور کچھ نہیں، بس مسکرا دیتے تھے۔ اور بھابھی ہر وقت تیتری کی طرح اڑتی پھرتی، گو اس کے پتی مہاراج کے مزاج میں زمین اور آسمان کا فرق تھا، مگر ایسی ہی سکون سے نبھ رہی تھی جیسے زمین آسمان کی نبھ رہی ہے۔ ان کی بلا سے بیوی چھوٹی کم عمر اور ضدی تھی، وہ ساس کا کہنا بس کچھ ایسا ہی مانتی، ذرا سی بات پر روٹ جاتی، منہ پھلا کر گھنٹو روتی، دیور سے شکایت کر دیتی، یہاں تک کہ سسر کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے ساس کی شکایت سسر سے بھی ہو جاتی۔ وہ تھی بھی تو ان سے عمر میں چھوٹی، ہاں، اور دیور سے تو ہر وقت اس کی لڑائی ہوتی۔ شادی ہو کر آئی ہے تو پہلا پیار دیور سے شروع ہوا اور پہلی لڑائی بھی اس سے ہوئی، اور اس نے شرم کرنا تو کسی سے سیکھی ہی نہیں۔ صبح ہی صبح یہ رنگین بھابھی اٹھ بیٹھتی اور بچوں پر صفائی کا حکم صادر کر دیتی، اور پھر انہیں ناشتہ کرانے میں تو ہلکان ہو جاتی۔ ممی میرا دوست، نرمل چلاتا، سوکھا مارا انسان، اور میرا دودھ، دودھ پی پی کر شیلا کچوری ہو گئی۔ اور سب سے چھوٹا بیٹا حلق کے آخری کونے سے چنگاڑ مارتا، بیچ میں بابی کشتی لڑتی، دیکھو ممی یہ میرا پاپڑ کھا گئی۔ نرمل منمنایا، لے اپنا پاپڑ، منگتے، شیلا پاپڑ منہ پر مار دیتی، دیکھو ممی، نرمل فریاد کرتا ہے، سوکھے ٹڈے، موٹی بھینس، تم سوکھے ٹڈے ہوا میں ایک دن اڑ جاؤ گے، اور تم موٹی کپا ایک دن ٹھپاک سے پھٹ جائے گی بس۔ کنیا الن، نرمل اور شیلا ایک دوسرے کا خوب منہ نوچتے، اور نہایت محبت سے گاڑی ہوئی فراق پر دودھ چھلک جاتا، اور نرمل کا توس اس کی کوہنی میں چپک جاتا۔ تب بابی چنگاڑتی، کیا اندھیر ہے نرمل کے بچے، وہ چٹا چٹ نرمل کی رانو پر تھپڑ مارتی اور شیلا کی کمر میں دھموکے لگاتی، اور جو اسی اسنا میں کہیں پورن آ جاتا تو بس بونچال کا مزہ آ جاتا۔ وہ آتے ہی نرمل کے اچھو لگوا دیتا اور شیلا کی تون میں انگلیاں ٹہلتا، اور بھیا کے موٹے موٹے گال اتنی مسلتا کہ خون چھلک آتا۔ ہٹ وہاں سے، آیا بڑا، بھابھی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پورن کو دھکیلتی، لے کے میرے بچے کے گال لال ہو گئے، مگر پورن اسے اور بھینچتا اور وہ ہنستا، دیکھ لو بابی ہنس رہا ہے نا بے حیا، ہاں بالکل اپنی ماں کی طرح۔ پورن اسے ہوا میں اچھالتا اور ساتھ ساتھ بابی کا جی اچھلتا، ہائے پورن، پورن میرا بچہ، وہ سانس روک لیتی، اور جب پورن اسے لٹکا کر اس کا منہ دکھاتا تو بھیا ہنستا ہی ہوتا۔ اور اگر آشا کوئی چیز لے کر آتی یا کوئی کام کرتی ہوتی تو پورن کہہ اڑتا، بابی آشا اپنی نوکر تو نہیں، وہ کام کیوں کرتی ہے؟ کام کیا ہم نہیں کرتے، بڑا کام کرتی ہو بچوں کو پیٹنا، اور اس کے سوا تمہارے لیے کیا کام ہے، مگر آشا کوئی نوکر ہے۔ काम करने से कोई नौकर नहीं हुआ जाता। और फिर आशा को ब्याह कर जाना है, वहां क्या नौकर लगे होंगे? गरीब घर की लड़की, क्यों गरीब घर की लड़की से क्या होता है? वो गरीब घर क्यों ब्याह कर जाएगी? गरीब घर नहीं ब्याह कर जाएगी तो पूरन सिंह जी, तुम कहीं से उसके लिए शहजादा ढूंढ लाना। वो ऐसे जोर से कहती कि सभी तो सुन ले, और पूरन डर जाता। मैं ये थोड़ी कहता हूं भाभी, तुम तो चीखने लगती हो, न जाने तुम्हारा गला क्यों इतना चौड़ा है। पूरन नीची आवाज से कहता और भाभी का बदला भैया गरीब के गालों और शीला की तोंद से लेता। नया बाब छोटे भैया। बड़ी बुढ़िया कहती हैं, ततिया मिर्चे ज्यादा खा लो तो पेट में जो बच्चा होता है वो बिल्कुल तेज मिर्च पैदा होता है। जब पूरन पैदा होने को था तो शायद बड़ी बहू जी ने मिर्चे चाबी थी, बस उसे तो किसी कल करार ही नहीं था। जब तक कॉलेज में रहा खैर, छुट्टियों में तूफान आता था, मगर अब तो वो 2 साल से घर पर ही किसी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। ये खबर भले चंगे को न जाने कहां से हो गया था। घर की जायदाद इतनी थी कि बैठकर 7 पीढ़ियां मजे से खाती, मगर कॉलेजों में लड़कों के दिमाग गांव से घबरा जाते हैं। दरअसल कसूर अपने गांव का है, वहां है ही क्या सिवाय मालगुजारी के, जिसमें किसी का दिल लगे। बेवकूफ गधों से बदतर इंसान, मैले बदहंगम टूटे टेढ़े झोंपड़े, सरांडी पगडंडियां, गंदे नाले और उपलों की भयानक कितारें, नीम मुर्दा मवेशी और मलगजे बच्चे, भला क्या दिल लगे। हाँ तो पूरन की बोटी बोटी बेकल थी, सारा दिन वो भाभी से उलझता, बच्चों को छेड़ता, छोकरियों से मजाक करता और चुपके चुपके बड़े भैया पर जुमले कसा करता। भाभी सुनते हैं कि भाई साहब जब दुनिया में तशरीफ ला रहे थे तो काली बिल्ली रास्ता काट गई, बस देख लो, नहीं तो तुम्हारी तरह हाथ ही टूटेंगे। मेरी बच्ची का पेट क्या पत्थर का बना हुआ है कि सुबह से चुटकियां ले रहे हो? तुम्हें तो अपने बच्चों की पड़ी रहती है, बच्चों के बाप की नहीं। भी बच्चे कौन मना करता है हर साल, मगर पति महाराज सुबह से पड़े खाता टटोल रहे हैं। भाभी मैं कहता हूं कभी तो हंसते ही होंगे भाई साहब, कभी अकेले में तो ऐसी जूती मारूंगी पाजी। अकेले में हंसने के ख्याल से ही भाभी लाल पड़ जाती। बड़े भाई ही नहीं क्या वो नौकरों को छोड़ देता था? चमकी को तो बाकायदा चपते लगाता, शेव करने में साबुन उसके मुंह पर मल देता, उसकी चुटिया पाई से बांध देता। वो तो है जवान छोकरी थी और खिल भी जाती थी छेड़छाड़ से, मगर भोला की ताई का और उसका भला क्या जोड़ था। वो गरीब टूटे फूटे काठ कबार की तरह कोने में पड़ी रहती थी, ढंग से सूझता भी न था। जाड़ों में तो खैर पुराना स्वेटर या कोट पहन लेती होगी, मगर चिलचिलाती गर्मी में तो उसे कुर्ते से फांस लगती थी। ढलान में धूप भी आ जाती थी और कोठरी में घुम्मस बला की, इसलिए वो टूटा हुआ पंखा लिए दालान में ही ऊंगा करती, पूरन उसके पास जा बैठता। ए भोला की ताई, मैं कहता हूं ये जवानी क्यों खाक में मिला रही हो? बुढ़िया सिर्फ घुन्ना कर देखती और मुंह फेर लेती कि शायद बेरुखी से बात टल जाए। मैं कितना कहता हूं तुमसे कि भई अभी उम्र ही क्या है। अरे हट इधर, मैं क्यों? यही तो तुम्हारी लट्टोराई मुझे नहीं पसंद। मैं कहता हूं क्या कहता है? भोला की ताई की आवाज बुड्ढे मर्दुए जैसी थी। अरे यही कहता हूं कि तुम कुर्ता क्यों नहीं पहनती हो? तमाम वो कोई काबिले एतराज बात ना कर पाता तो यही कहता। बुढ़िया डटाई से डटी रहती, पर जवान छोकरियां ये सुनकर शर्म से गड़ जाती। भाभी भी बात टालने को दूसरी तरफ मुतवज्जा हो जाती, जैसे उसने सुना ही नहीं। अरे क्या पहनूं अब, बुढ़िया फलसफा छांटती। क्यों नहीं पहनो? कहो तो मैं ला दूं दो चार पोलके। चल पोलकों के सगे, बुढ़िया की बदमिजाजी कम ना होती। कितना कहता हूं भोला की ताई कि मेहंदी लगाया करो, सुरमा काजल। छोकरियां हंसती और भोला की ताई मोटी मोट गालियां बुड़बड़ाती। ये तो छुड़ेले तुमसे जलती हैं भोला की ताई। वो और आहिस्ता आहिस्ता उसके पास खिसकता। अरे क्यों मुझ पे चढ़ा चला आए है? उधर हट बेटा। मुझे बेटा कहती हो? पूरन संजीदगी से बुरा मानता। हाँ भैया जरा गर्मी है, उधर बैठ। अरे भैया कहती हो मुझे? पूरन और भी बिगड़ता। बेटा ना कहूं भैया ना कहूं तो क्या खसम कहूं तुझे? और बुढ़िया फिर मोटी मोट मुगल्लजात सुनाती। मैं तो कहता हूं फेरे करा लो मुझसे, क्या होगी तुम्हारी उम्र? अरे क्यों शामत आई है तेरी हरामी, बुढ़िया भर्राई हुई आवाज से गुर्राई। भोला की ताई जब गालियां देती हो तो बस जी चाहता है कि मुंह चूम ले, वाह वाह। और फिर गालियों को गैर मोसर पाकर भोला की ताई मारने पर तुल जाती। लोंडियां बांदियां लपेट में आ जाती और वो इन सब को नंगी नंगी बातें कहती, यहां तक कि पूरन भी झीम कर भाग खड़ा होता। बुढ़िया बड़ी बहू जी के पास फरियाद लेकर जाती तो छोटी बहू उल्टा छेड़ने लगती। अरे भोला की ताई कर लो ना, ऐसा क्या बुरा है लड़का? मगर भोला की ताई कुछ ऐसी बातें कहती कि छोटी बहू सुनते ही पहले ही दूसरे कमरे में चली जाती। नया बाब चमकी। चमकी उसी गांव की थी जहां आशा की नानी मरी थी। उसे सब चमकी इसलिए कहते थे कि गांव की हर तीसरी लड़की का नाम लोग चमकी ही रखते हैं। आप कानी खरी भजंगा लड़की को देखकर यही सोचेंगे कि उसका नाम जरूर कल्लो या रुद्दो वगैरह होगा, लेकिन वो चमकी निकलेगी। मगर चमकी थी भी चमकी। उसकी आंखें चमकती थीं, गाल चमकते थे और बाल तो लोहे के पॉलिश किए तारों की तरह चमकते थे। उसकी कमर भी चमकती थी और हाथ भी चमका करते। जब वो नाचती तो तारे से नाचने लगते। आवाज भी ऊंची और पतली थी। आशा जैसी मुन्नी ऐसी कमजोर और शर्मीली ना थी कि सुनो तो जी चाहे सो जाओ। उसकी आवाज पर तो सोते सपने जाग पड़ते थे। जब बाहर जाती तो दरबान चपड़ासी उर्दली सब गुनगुना उठते और धोबी तक के बाजुओं में बल आ जाता और आवाज ऊंची हो जाती। मगर वो बाहर निकलती तो चितवने चढ़ी, नाक फड़कती और होंठ सुकड़े। दो पैसे के चार भी नहीं पूछती थी। यहां तक कि मुंशी जी जो खासा एफए पास थे, जब घूमी घूमी आंखों से इसे देखते तो वे एक झटके के साथ मुड़ जाती। हां पूरन के घोंसे खाकर जब उसकी कमर में मीठा मीठा दर्द उठता वो खिल जाती। वो था भी तो कितना भिड़ंगा, बेरा तो उसका काम कर ही ना सकता, सारे तो कपड़े चिर जाते। और फिर भला नौकर कौन उसकी चीजें संभाल सकता था? एक कपड़ा निकालना होता तो वो सारी अलमारी उलझ कर फेंक देता। एक जूता पहनता और चार उठाकर दूर पटखता और किताबें तो ताश के पत्तों की तरह फेंट कर रख देता। आईना की मेज पर जैसे कोई गुसल कर रहा हो, सब भीगा हुआ और जगह जगह साबुन। फिर अगर चमकी साफ करती तो उल्टी चुटकियां और घोंसे इनाम में मिलते। वो सुबह ही सुबह एक मशगूल दारोगा की तरह उसके कमरे का इंतजाम शुरू कर देती। और बला से कोई काम हो या ना हो, आशा कुमारी का हाथ बटाने को बैठी पूरियां बेला करती और वो ताजे ताजे फूल गुलदानों में लगाकर पूरन का कमरा गुलजार कर देती। पहले तो ये छोकरियां इंजन गाड़ी के आगे आकर लेट जाती हैं और फिर जब कुचल जाती हैं तो हाय तोबा मचाती हैं। बदनामी बेइज्जती और दुनिया लूटने की धमकियां ले बैठती हैं और अपना ऐब गरीब समाज के सर थोपती हैं। खुदा की शान है फिर भी दुनिया इन्हीं के साथ मातम में शरीक हो जाती है। तो चमकी भी जान जान कर इंजन के आगे पिसर जाती थी। इसके साथ ही ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंचा।